श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 39 डेट 1 अप्रैल 2015 स्पीकर आदि प्रभु
श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु वैष्णवंस श्रीरूपं साग्र जातं सगन रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखानुतंस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
श्री श्री राधा गिरिधरि भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्रील प्रभुपाद की। तो आज के जो ये प्रसंग है पिछले क्लास के साथ पिछले जो था तो गृहस्थ जीवन किस प्रकार का अति भी दुखमय होती है विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में और बड़े बड़े बहुत बड़ी बाधा है बहुत बड़ी रुकावट है जो कि हमें भगवान के पे पहुंचने के लिए अड़चन डालती है। ये गृहस्थ जीवन एक प्रकार की बड़े ही कठोर शब्द से कहा जाए एक प्रकार का नरक है जो कि हमें भगवान को क्षण क्षण में भुला देता है। बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि पिछले क्लास के प्रभु जी के क्लास के अनुसार मैं बता रहा हूँ और यहाँ पर भी ऐसे बताया गया है कि आश्रम कोई खराब नहीं है लेकिन आश्रम में रह करके भगवान को भूल जाना ये बहुत बड़ा दुर्गति है। कोई भी आश्रम में जीव रहे वो आश्रम में रह करके भगवत प्राप्ति कर सकता है लेकिन आश्रम में रहते हुए आश्रम का जो मर्यादा है जब जीव वो मर्यादा को उल्लंघन कर देता है तो फिर वो भगवान को भूल जाता है और भगवान को भूलना एक प्रकार की नरक है नरक की जीवन बन जाती है। जैसे जीव भगवान को भूल जाता है तो उनका जीवन में नरक शुरू हो जाती है दरवाजा उनको खुल जाती है। तो यहाँ ऐसे बताया गया है कि ये जो मनुष्य जीवन में जब तक सने सने जुहु पंकम यहाँ पर ऐसे बताया गया कि जुहु पंकम स्थलान्याम च विरुध यहाँ पर ऐसे बताया गया कि घर संपत्ति और घर परिवार और धन संपत्ति ये सब मनुष्य के जीवन में एक प्रकार की कीचड़ है। यहाँ पर कहा गया है कि सने सने जुहु पंकम पंक मतलब कीचड़ ये घर परिवार धन संपत्ति ये सब मनुष्य जीवन में एक प्रकार का कीचड़ है लेकिन जैसे कोई जीव के भीतर भक्ति आ जाती है वो कीचड़ को छोड़ देता है एक कीचड़ को त्याग देता है मतलब घर परिवार धन संपत्ति को त्याग देता है। जैसे भगवान का भक्ति उनके हृदय में आ जाता है तो वो सबसे दूर हो जाता है। और आज यहाँ पर ऐसी वो बात भी ऐसे बताया गया कि यथा अहम ममता शरीर आदिशु अहम ममता कहाँ किधर होती है शरीर के ऊपर नहीं तो शरीर के संबंधी वस्तुओं के ऊपर हाँ ममता या अहंकार ये कहाँ होती है शरीर के ऊपर नहीं तो शरीर के संबंधी वस्तुओं के ऊपर। लेकिन जीव जब अपने शरीर और शरीर के संबंधित वस्तुओं के ऊपर ममता करता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन को शास्त्रों के द्वारा निंदा किया गया है। शास्त्रों तो ऐसे बता दिया वो एक गधे के जीवन की भांति है जो मनुष्य जीवन होते होने के बाद अपने शरीर और शरीर के संबंधी वस्तुओं से और आगे कुछ नहीं देख पाता, हाँ बस उतने ही वो बंधे रहता है। आगे जो एक बहुत बड़ी सुख है वो उसके विषय में वो जिज्ञासा नहीं करता कि जानने के लिए प्रयास नहीं करता, तो इस प्रकार की गधे की जीवन है। हाँ तो यहाँ पर यही कहा गया कि ये गधे के जीवन को हाँ शास्त्र में घृणित घृणा किया गया, निंदा किया गया। यथा हम ना यस्य आत्मबुद्धि कुणे पे त्रिधा तुके सोधी कलत्र आदिशु भौमो यद्य यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न कैचित जनेशु अभिगेशु स एव गोखर। ये जो शरीर है पित्त बात और कफ ये तीन धातु में बना गया है। पित्त बात और कफ हाँ ये तीन वस्तुओं के द्वारा बनाया गया निष्क्रिय काया, ये निष्क्रिय काया ये सब को जब जीव अहंग बुद्धि कर लेता है, पित्त बात कफ में बना हुआ शरीर को जब जीव अहंग बुद्धि कर लेता है, मैं हूँ ये शरीर मैं हूँ इस प्रकार का उसका जब बुद्धि हो जाती है, तब फिर क्या और क्या होती ना अपने बच्चे और अपने घर वाले अपने सखा संबंधी और अपने पत्नी उसी को ही अपना मान लेता है, और जो देश में जन्म लिया वो देश को पूजा करता है। ऐसा बुद्धि वाले व्यक्ति हाँ तो जब तीर्थ में जाता है तीर्थ को दर्शन नहीं कर पाता है। जो मैं और मेरा में अटका हुआ है, जिसका बुद्धि मैं मेरा में है, तो ऐसा व्यक्ति को तीर्थ दिखाई नहीं पड़ते हैं। तीर्थ क्या है उनका बुद्धि में नहीं होती है, बस तीर्थ उनका बुद्धि में इतने ही समझ में आता है, बस तीर्थ में जाना, वृंदावन जाना, यमुना में डूब लगाना, गंगा मायापुरी में जाना ना, गंगा में डूबी लगाना, और जगन्नाथपुरी में जाना, समुद्र में डूबी लगाना, बस उनके बुद्धि में तीर्थ वही है। तीर्थों का वास्तविक तीर्थ शब्द का अर्थ है अपने को शुद्ध बनाना, अपने को पवित्र बनाना, ये तीर्थों का अर्थ होती है। लेकिन जिसका बुद्धि मैं और मेरा है इस उसमें है, तो वो ऐसे ऐसे तीर्थ में रहने वाला स्वरूप सिद्ध आत्मा को दर्शन नहीं कर पाता। वास्तविक तीर्थ वही है, जब एक स्वरूप सिद्ध महात्मा का दर्शन होती है तब तीर्थों की फल प्राप्त होती है। जब हमारे जीवन में एक शुद्ध महाभागवत का आविर्भाव होते हैं तो समझ लेना है कि हमें तीर्थ किए हैं। लेकिन ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जो शरीर के धारणा पर जीवित रहते हैं, शरीर के स्तर पर जीवित रहते हैं, ऐसे लोग ऐसे तीर्थ स्थानों में जाके न कैर्चित जनेशु अभिगेशु तीर्थो, हाँ ये तो हमें कहेंगे जो ये तीर्थ जो है ये भी एक प्रकार का तीर्थ है, गंगा यमुना ये एक प्रकार का तीर्थ है, उनके भीतर इतने योग्यता है हमको शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम योग्य नहीं बन पा रहे हैं शुद्ध होने के लिए, उनका संग ले करके हमें इतने योग्य नहीं बन पा रहे कि हम अपने को शुद्ध बना दें। लेकिन वो तीर्थ में जो महार तीर्थ के रूप में निवास करते हैं भगवान के महाभागवत स्वरूप सिद्ध आत्माएं जो वो तीर्थ में निवास करते हैं, वो कोई योग्यता अयोग्यता वो नहीं, वो सब चीजें वो नहीं देखते हैं। हाँ वो उनके दर्शन मात्र से ही बद्ध जीव शुद्ध हो जाता है, तीर्थ अपेक्षा करता है, ये उसको शुद्ध करना है नहीं करना है, वो तीर्थ वो अपेक्षा है, लेकिन शुद्ध भागवत शुद्ध महाभागवत वो अपेक्षा नहीं करते हैं। वो कोई भी वो बद्ध जीव को दर्शन करने मात्र से ही उनको शुद्ध कर देते हैं। लेकिन ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति न कहिर्चित कभी नहीं जाते हैं, ऐसे महात्माओं के शरण में कभी नहीं जाते, न कहिर्चित जनेशु अभिगेशु, हाँ उनका दर्शन लेते हैं ना, उनका पूजा करते हैं ना, उनका भेंट करते हैं ना, उनके मुख से जाकर के सुनते हैं। तीर्थ यात्रा का सफलता तब होती है जब वहां पर जाकर के ऐसे महात्माओं के मुख से हम जब कुछ सुनते हैं, भगवान की कथा को जब सुनते हैं, तब समझना है कि हमारा तीर्थ यात्रा पूर्ण हुआ। लेकिन ऐसे लोग ऐसा नहीं करते, न कहती जनेशु अभिगेशु, तो ऐसे बुद्धि वाले लोगों को क्या कहा गया, सैव गो या खर स, वो लोग कैसे हैं, गाय या गधा की भांति है। गधा एक ऐसा एक जंतु है जिसमें जिसमें शारीरिक धारणा अधिक होती है, हाँ, और ऐसे ऐसे शरीर धारणा जो जीव में अधिक होती है तो वो ये गधा का लाइन में आ जाते हैं। भगवान भी कहें, भगवान भी कहें ये बात को, ऐसे जीव जो जीव के भीतर शरीर की धारणा, शरीर का जो प्रवृत्ति हाँ ज्यादा मात्रा में होती है वो गधा के जैसे हैं। और आज के यहाँ पर यही कहा गया अहंग ममता, अहंग अहंग बुद्धि, जब अहंग बुद्धि होती है तो हमें हाँ ऐसे भक्तों के, भगवान के भक्तों के हमें दर्शन नहीं कर पाते। जिस प्रकार सिंधु प्रदेश के जो राजा थे कपिल मुनि के आश्रम में निकल पड़े थे आत्म साक्षात्कार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, हाँ वो आत्म साक्षात्कार को, आत्म साक्षात्कार का शक्ति को प्रदान करने के लिए उनके सामने जड़ भरत जी जैसे महान हाँ आत्मा उनके सामने थे, लेकिन वो उनको पहचान नहीं सके। क्यों ना, अहंकार थी उनके भीतर, मैं एक राजा हूँ, मैं सिंधु प्रदेश के राजा हूँ। जिस प्रकार जब तक ये पद पदपी इस प्रकार की अहंकार जीव के भीतर रहती है तब तक वो ना भगवान का दर्शन कर पाता है, ना भगवान के भक्तों को, ना भगवत संबंधित वस्तुओं को। ये अहंकार एक प्रकार के हमारा शत्रु है, हाँ ये सब चीजों को हमें दर्शन करने के लिए हाँ नहीं देता है। रावण में इतने अहंकार था, वो ऐसा विचार कर रहा था, सोच रहा था ये यहाँ से मैं स्वर्ग तक एक सीढ़ी बांधूंगा और मेरे घर परिवार लोगों को हाँ स्वर्ग लेके, स्वर्ग के जो भोग है अमृत हाँ मेरे परिवार के लोगों को भोग कराऊंगा। लेकिन राम, भगवान राम उसको ऐसा होने नहीं दिए। वो अहंकारी रावण का इस प्रकार का सोच विचार को आकर के वो खत्म कर दिए, मार दिए, उसका वध कर दिए। ठीक उसी प्रकार वर्तमान के जो विज्ञानी लोग है, साइंटिस्ट लोग है, अपने जड़ भौतिक भौतिक ज्ञान बुद्धि के द्वारा वो अपने मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हाँ मशीन हाँ यांत्रिक पद्धति के द्वारा वो ऊंच लोगों को यात्रा करने के लिए सोच करते हैं, सोच विचार करते हैं। लेकिन ये बात तो सत्य है, जब तक एक व्यक्ति के तरफ पुण्य नहीं होती है, सुकृति नहीं होती है, तो उनको उच्च लोगों को उच्च लोग का प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये जो अहंकार अहंग ममता, उसको हमें, यदि हमें उच्च लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अहंग ममता ये जो हमारे हृदय के भीतर बैठा हुआ है हाँ उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, उसको दूर निकालना पड़ेगा। हाँ भगवद गीता में भगवान भी ये बात बताएं, अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो हर कार्य में अपने, हर कार्य में अपने को ही कर्ता मान बैठता है, मैं ये किया। हाँ ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं तो मूर्ख है। अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, वो मान लेता है अपने को कर्ता, लेकिन कार्य कर रहा है मेरा प्रकृति, और प्रकृति क्या है, प्रकृति भगवान का शक्ति है, भगवान का शक्ति कार्य कर रही है, लेकिन मूढ़ आत्मा, भगवान इसीलिए कह रहे हैं विमूढ़ आत्मा, ये मूढ़ है, मूर्ख है, विमूढ़ आत्मा कर्ता हम अपने को कर्ता मान लेता है। ये बहुत ही संसार भगवान का हाँ क्षणिक शक्ति का प्रकाश है, और ये भौतिक संसार में भगवान का प्रकृति जो शक्ति है वो कार्य कर रही है। हाँ लेकिन बद्ध जीव अपने बद्धता के कारण हाँ तो वो अपने को मालिक मान बैठता है, तो इसीलिए भगवान ऐसे जीवों को मूढ़ कहते हैं। एवं गुरुहेशु सत्तानाम प्रमतानाम तत इहाय, जो मतलब जो गृहस्थ भक्त नहीं है वो लोगों के लिए ऐसे बात कहा जाता है। आप लोग तो गृहस्थ होने के बाद भी भगवान के शरण में हाँ, तो आप लोग ऐसे ऐसा नहीं कहना है कि हाँ। तो एवं सत्तानम प्रमतानम तत, एवं गृहेशु सत्तानम प्रमतानम तत इहाय, हाँ जो गृहस्थ अपने घरेलू मामलों में हाँ चिपका हुआ है, मतलब अपने घरेलू मामलों में अत्यंत आसक्त है, और तत इहानम सत्ता प्रमतानम तत इहायम, और उन्हीं के चिंता में वो डूबे रहता है, उन्हीं के चिंता में वो मग्न रहता है, ऐसे लोग ये भौतिक जगत में भगवान का काल शक्ति को पार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान कह यहाँ पर कहा गया है कि विदुर जी जैसे महात्मा ये बात को भी कहें, हाँ भगवान भी ये बात कहें कि कालम परम दुस्तरम। ऐसे लोग ये भौतिक जगत में जो मेरे काल शक्ति को लांघ नहीं सकते हैं, हाँ क्यों ना, कालम परम दुस्तरम, परम अत्यंत शक्तिशाली है, क्या मेरा काल शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, दुस्तरम दुर्लंघनीय, कालम परम दुस्तरम, ये जो काल शक्ति है भगवान के जैसे ही शक्तिशाली है, और भगवान का अध्यक्षता में वो कार्य करती है। ये भौतिक संसार में हर प्राणियों के जीवन में काल समान रूप से गति करती है। जिस प्रकार एक बालू में बंधा हुआ पुल थोड़ा सा पानी के आघात में टूट जाती है, ठीक उसी प्रकार बड़े बड़े महावीर लोग काल के सामने आकर के समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे गृहस्थ लोग, ऐसे लोग जो अपने घर के कारोबार में हाँ अत्यधिक व्यस्त हैं, अत्यधिक उसी कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को जिस प्रकार के सांप आ करके चूहा को दबच लेता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का काल शक्ति अनजाने ऐसे जीव को आकर के दबोचता है। जिस प्रकार के सांप चूहा को दबच पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे लोगों को भगवान का काल शक्ति आकर के दबोचता है। इसलिए जो लोग धीर है, कहा गया है धीर अहं ममता धीर, इसलिए जो लोग धीर है, जो लोग मुनि लोग है, हाँ ये काल शक्ति के द्वारा ग्रसित होने के पहले ये संसार में जो तथाकथित ममता उसको छोड़ देते हैं, अपने अहंकार को त्याग देते हैं, अपने अहंकार और संसार के प्रति ममता को त्याग करके वो भगवान के शरण में चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का रक्षा हो जाती है। भगवान भगवद गीता में आखिर में सर्वश्रेष्ठ उपदेश यही सारा संसार को बताएं, शरणं व्रज, मेरे शरण ले लो, रक्षा हो जाएगा। और यहाँ यही कहेगा जो लोग धीर होते हैं अपने आचरण से, अपने जीवन से, अपने हर कार्य में जो लोग धीर है, धीर व्यक्ति वो भगवान को देख सकता है, धीर व्यक्ति वो भगवान को शरण भगवान का शरण ले सकता है। युधिष्ठिर महाराज जब अपने भाइयों के साथ आखिर समय में दिव्य लोगों की ओर यात्रा कर रहे थे, ठीक उस समय युधिष्ठिर महाराज को छोड़कर और बाकी जो उनका चार भाई थे वो गिरने लगे। जब गिर रहे थे जब पहले सहदेव गिरे तो भीमसेन ने प्रश्न किए, अरे महाराज ये सहदेव गिर रहे हैं। तो भीमसेन के ये सहदेव का गिरने का जो ये बातों को देख करके युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को जवाब दिए थे कि ये जो सहदेव है वो हमेशा अपने को बहुत ज्ञानी मान रहे थे। उनका जो ये ज्ञान है, उनका जो ये ज्ञान की अहंकार है, उनको ये गिराया, उनका जो ज्ञान की अहंकार उनको ये भौतिक संसार में गिरा दिया। फिर आगे चले युधिष्ठिर महाराज कहने लगे भीमसेन तुम चलते रहो। तो फिर आगे चल रहे थे, हाँ आगे थोड़ी जाके नकुल ने गिर गए। तो फिर भीम ने पूछे कि महाराज नकुल गिर गए? हाँ, तो फिर युधिष्ठिर महाराज वहाँ पर जवाब देते हैं, ये नकुल जो है अपने को बहुत बड़ा सुंदर मानते थे, हाँ तो उनका जो ये सुंदरता की जो अहंकार है उनको गिराया, तुम चलते रहो। महाराज बोले तुम चलते रहो। फिर थोड़ी जाके आगे अर्जुन गिर गए। जब अर्जुन गिरे, हाँ भीमसेन आश्चर्य हो गया, अरे अर्जुन जैसे व्यक्ति महाराज ये क्या है? हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज उनको जवाब दिए, ये अर्जुन जो है हमेशा अपने को बहुत बड़ा धनुर्धारी समझते थे, उनका जो ये अहंकार है उनको गिरा दिया। फिर थोड़ी आगे जा करके खुद भीमसेन ही गिर गए। जब खुद भीमसेन गिर गए, वो गिरे हुए अवस्था में प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज को, मेरा गिरने का कारण क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज वहां पर उनको कहें कि भीमसेन, आप हमेशा अपने को बहुत बड़ा शक्तिशाली मानते थे, बहुत बड़ा गदाधारी मानते थे और बहुत हमेशा खाते रहते थे, तो इसीलिए आपका जो ये अहंकार है आपको गिराया। यदि वो ये पांडव लोग कोई कर्मबाध्य जीव नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों को गिरा करके सारे संसार को ये मूल्यवान शिक्षा देना चाहते थे कि अहंकार पतन का मूल है, इसलिए उसको छोड़ दो। इसलिए जो महात्मा लोग होते हैं, तत अभिप्रेत अभासत, हमारे जीवन में आते हैं, हमारे घर के पास आ जाते हैं, हमारे जीवन में आ जाते हैं, तत अभिप्रेत अभासत आकर के ये चेता देते हैं, अभी तो निकलो, अभी तो निकलो, बस अब निकलो। तत निर्गम्यताम शीघ्रम, निर्गत निर्गम्यताम मतलब अभी निकलो। ऐसे भगवान को भूले हुए जो गृहस्थ लोग अपने चार दीवार के भीतर पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के पास ऐसे महान सुधात्मा लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक आवाज देते हैं, निर्गम्यताम निकलो, शीघ्रम शीघ्र जल्दी निकलो। किस बात का? न भयम, भयम इदम पश्यम आगतम, हे ऐसे लोग देखो, इदम पश्यम, पश्यम तो देखो, आगतम भयम, क्या आगतम ना भय। ऐसे महात्मा लोग इस प्रकार के भय दिखा करके जो लोग ये संसार के स्नेह जाल में गिरे हुए हैं वहां से वो लोगों को निकालते हैं। और जो लोग प्रज्ञावान हैं, जिनका बुद्धि निर्मल है, जिनका बुद्धि भगवान को पाने के लिए थोड़ा सा उत्सुक है, ऐसे प्रज्ञावान लोग ऐसे महात्माओं का हृदय को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। यह शोकात परतो वा यह जातो निर्वेदो आत्मनम, हृदि कृत्वा हरिम। ऐसे प्रज्ञावान लोग जो लोग अपने वो शोकात अपने प्रयास या परो दूसरे के, ऐसे गृहस्थ लोग अपने आप से या दूसरे की समझाने से वो जग जाते हैं। शोकात मतलब अपने से, परो तो हुआ या दूसरे कोई समझाने से, यह जातो निर्वेदो आत्मनम, वो लोग जग जाते हैं और जग करके ये बात को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इस भौतिक जगत की जो असत्यता, जग करके ये भौतिक जगत की जो असत्यता और दुख को वो समझ लेते हैं। समझ करके क्या करते हैं ना, हृदय कृत हरिम, अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान के भगवान के आश्रय में चले जाते हैं। ये भौतिक जगत दुख है, ये बात को जब समझ जाते हैं, अपने हृदय में जो भगवान है उनके आश्रय में चले जाते हैं और क्या करते हैं, गेहाद प्रव्रजेत, और ये घर को छोड़ देते हैं। अपने हृदय में निवास करने वाले भगवान के शरण में पूर्ण रूप में आश्रित हो करके वो घर को छोड़ देते हैं, गेहाद प्रव्रजेत, वो घर को छोड़ देते हैं। इस प्रकार का लोग को शास्त्रों के द्वारा क्या कहा गया, स नर उत्तम, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, भले वो संसार में है लेकिन है बहुत बड़ा है। क्यों ना, उन्होंने ये झूठी माया को छोड़ दिया है, ये संसार की जो नंगापन है वो देख लिया है, उन ये संसार की जो मोह है उनको पहचाना है, इसीलिए गेहा प्रव्रजित, ये घर रूपी प्रहलाद महाराज बड़े धिक्कार, बहुत बड़ी कठोर शब्द में कहते हैं, गृह अंधकूपम, जो घर में रह रहे हैं ये कैसे है, एक अंधा कुआं है जो घर में रह रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये अंधा कुआं है। जो अंधा कुआं होता है ना, एक बाजू में होता है, एक साइड में होता है, जहां पर लोगों की जात आत नहीं होती है। अब ऐसे अंधा कुआं में कोई गिर जाए, अब पहले से ही अंधा कुआं के भीतर, जो कुआं के भीतर पानी नहीं होती है, पानी नहीं होती है मतलब जो घर गृहस्थी में भक्ति नहीं होती है, जो एक तो अंधा कुआं है और ऐसे अंधा कुआं के भीतर पानी नहीं होती है, वो ऐसे पानी नहीं होने वाले कुएं के भीतर पहले से सांप बिच्छू मच्छर हाँ ऐसे जंतुएं निवास करते हैं। और ऐसे भयानक जंतुओं के निवास स्थान में, अंधा कुआं में कोई व्यक्ति गिर जाए तो उनका हालत क्या होगा? ऐसे इस प्रकार का एक जागा को प्रहलाद महाराज हाँ गृह अंधकूपम कहते हैं। जो घर गृहस्थ में भगवान का भक्ति नहीं होती है, हाँ प्रहलाद महाराज इस प्रकार के चित्र देख करके सतर्क करते हैं, एक चेतावनी देते हैं। और ऐसे अंधा कुआं जो बाजू में होती है हाँ, तो वहां पर कौन जाएगा? कोई जाएगा तो गिरे हुए व्यक्ति को तो उठाएगा ना, तो वो तो एकदम साइड में है, उस वहां पर कौन जाएगा? लेकिन भगवान के महान संत इतने ऐसे ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे अंधा कुआं के पास चले जाते हैं और जा करके हाँ उनको निकालने के लिए प्रयास करते हैं। ये जो अहंकार है, ये अहंकार को मूल है बद्ध जीव का, भौतिक जगत का पतन का मूल कारण है उनका अहंकार। हमें जब ये हम जब ये संसार में गिरे हुए हैं, उनका प्रमुख कारण है अहंकार। अहंकार ही पतन की कारण है। और ये अहंकार को किसी को शासन करना है, दो चीजें, एक तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए हाँ, और दूसरी क्या है? संसार के प्रति वैराग्य लेनी चाहिए, संसार के प्रति हमारा विरक्ति होनी चाहिए। विरक्ति के बिना कृष्ण भावनामृत में हमें प्रगति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हाँ ये भी करेंगे ये भी कर, नहीं होने वाली है। कोई दो नाव में पैर रख करके समुद्र पार नहीं कर सकता। समुद्र जैसे जागा को पार करना है एक लेना है, उसी प्रकार ये भी करना है, ये साथ साथ ये भी करना है, नहीं होगा। फिर भगवान भी इतने कृपालु है हाँ, तो करते हैं कि दो मार्ग दिखाया गया, एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वो लोग है जो सन्यासी संन्यास ले लिए हैं, संसार से छुट्टी ले लिए हैं, जो लोग रिटायर्ड है संसार से, जो लोग रिटायर्ड है संसार से, जो लोग संन्यास ले लिए हैं, वो लोग के लिए निवृत्ति मार्ग है, वो तो चलेंगे हाँ। और प्रवृत्ति मार्ग में वो लोग हैं जो लोग भोग भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, लेकिन इतना प्रगति नहीं हो सकती है ऐसे मार्ग में, इतना जल्दी अधिक प्रगति नहीं हो सकती है। फिर भी भगवान इतने कृपालु है हाँ, अपने भक्ति जैसे महाधन को ऐसे जीव को दिए हैं। भक्ति ऐसे एक धन है, ऐसे एक वस्तु है हाँ, वो कहीं से भी वो जीवात्मा को उठा सकता है, निकाल सकता है, वो इतने शक्तिशाली है। ये अहंकार ऐसा एक चीज है ना, वो कभी भी हमारे जीवन में आ सकती है हाँ। मैं रोज मंगल आरती आता हूँ, देखो मैं कितना भगवान की सेवा में बिजी हूँ, मैं कितना बड़ा नम्र भक्त हूँ हाँ, कितने बड़े वैष्णव बन गया मैं तो, अलग अलग रस अभी आस्वादन कर रहा हूँ, अलग अलग रूप लेकर के ये अहंकार हमारे हमारे सामने खड़े हो सकता है। उनको पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं पहले एक बार कहा था उनको पहचानना है हाँ। साधन क्या है? साधु संगे हरिनाम, साधु के संग में जब हरिनाम करते हैं, वो हरिनाम हमारे हृदय में एक अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। अकेले वो शक्ति अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन साधु संगे हरिनाम जब करते हैं तो वो शक्ति जब हम प्राप्त करते हैं, ऐसे शक्ति के द्वारा हमें ये संसार के जो झोटी आकर्षण है हाँ, उसको पहचान के उससे हमें मुक्त, अपने को छुड़ा सकते हैं, अपने को हमें मुक्त करा सकते हैं हाँ। प्रभुपाद जी समय हो गया, प्रभुपाद जी एक बार भारत में जब प्रचार कर रहे थे, कुछ कुछ गृहस्थ लोग उनको अपने घर में निमंत्रण देते थे हाँ, अपने घर में जब कोई कुछ कोई त्यौहार होती थी तो प्रभुपाद जी को निमंत्रण देते थे, तो प्रभुपाद जी जाते थे। और जो गृहस्थ लोग बड़े धार्मिक है वो प्रभुपाद जी के शरण में आकर के भक्त बन जाते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों को लेकर के एक गृहस्थ के घर में गए थे और वो गृहस्थ आए और प्रभुपाद जी के सामने आकर के कहने लगे, प्रभुपाद देखो ये मेरा पत्नी है। और उनके पत्नी प्रभुपाद जी के सामने आए और थोड़ा सा नमस्कार किए और चले गए। फिर वो जाने के बाद, प्रभुपाद ये मेरा बड़ा बेटा है। फिर वो जाने के बाद, ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा मझला वाला है। हाँ, तो प्रभुपाद जी को इस प्रकार का गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार का जो लोगों को इस प्रकार का दिखा रहे थे और सारे परिवार के लोग प्रभुपाद जी के सामने आते थे और नमस्ते कर करके चले जाते थे। और प्रभुपाद जी भी कुछ कुछ हंसते थे और अपने सिर को हिलाते थे। तो फिर वो व्यक्ति कहने लगा, प्रभुपाद ये मेरा दामाद है और ये मेरे दामाद के बच्चे हैं। तो इस प्रकार का जब कह रहे थे, कुछ समय के लिए वो व्यक्ति अपने घर के लोगों को लेकर के थोड़े समय के लिए बाहर चले गए हैं, जहाँ जो कमरे में प्रभुपाद अपने शिष्य को लेकर के बैठे थे। तो जब कुछ क्षणों के लिए बाहर चले गए, उस समय प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को क्या कहने लगे, ये मेरा मैथुन जीवन है। जब वो गृहस्थ इस प्रकार का अपने घर वालों के साथ थोड़े समय के लिए बाहर चले गए, तो उनका नौ वो जब नहीं हुए वो जगह पर, ठीक उसी समय प्रभुपाद जी अपने शिष्य को धीरे से कहे, और ये मेरा मैथुन जीवन है। कहने का अर्थ ये होती है, मनुष्य इस संसार में आकर के अहं ममता शरीर आदिशु, अपने शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर अहं ममता करके ये जो मनुष्य जीवन है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, अनेक जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन मिली है। और अनेक जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर जो मिला है, उसे हमें क्या करते हैं, ये संसार के थोड़े सुखों में, उसको क्षणिक सुख में उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे हमें भगवत प्राप्ति कर सकते थे, जिसमें हमें भगवत प्राप्ति कर सकते थे, उस मनुष्य शरीर को हमें संसार के क्षणिक सुख में नष्ट कर देते हैं। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया है, को अर्थान प्राप्य गर्भित। ये संसार में ऐसे कौन व्यक्ति होगा जिसको धन प्राप्त होने के बाद और ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद उनको अभिमान नहीं होगा? ये संसार में ऐसा कौन है जिसको धन प्राप्त होने के बाद और ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद उनके भीतर अहंकार नहीं होगा? ऐसा कौन है? इसीलिए मनुष्य को धीर बनना चाहिए, धीर और तपस्या की जीवन स्वीकार करना चाहिए। और तपस्वी जीवन को जब एक मनुष्य स्वीकार करता है, वो तपस्या के बल के ऊपर वो देख पाता है, मुझे क्या करना है, मेरा जीवन किस लिए है, कितने जन्मों से हमें भोग में ये जीवन को हमें लगाए रखे हैं। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होता है जिनके ऊपर कृपा होती है भगवान की, तो वो समझ जाता है इस जीवन में वो समझ जाता है, फिर वो तपस्या का जीवन को स्वीकार करके धीर बनता है, मुनि बनता है। जैसे हमें एक मुनि के जीवन को हमें स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर शरीर आदिशु, ये शरीर के साथ जो हमारे जुड़े हुए हैं, धन हो, गाड़ी घोड़ा हो, बंगले हो, बैंक बैलेंस हो, परिवार हो, बच्चे हो, पत्नी हो, वो अपने आप छूट जाते हैं। जैसे मुनि का जीवन को स्वीकार करता है, जैसे धीर बनता है, ये सब जो हमारे वो अपने आप छूट जाती है। अहंग ममता को त्याग देता है। जब इस प्रकार का अहंग ममता को त्याग करेंगे, शरीर संबंधित वस्तुओं को त्याग करेंगे, तब जाकर के हृदयेषु, हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं उनका दर्शन हमें कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी।